जो नाम रूपातक नाम रूपात्मक जो वस्तु है, भौतिकता है, नाश्वंद है, उसमें मैं नहीं हूं। तुम्हारा शरीर भी मैं नहीं हूं। मैं हूं तो तुम्हारे अंदर जो आत्मा का स्वरूप है, सूक्ष्मता है, वो मैं। भगवान अपने विभूतियों का दर्शन करा रहे हैं उद्धव जी। उद्धव, ये विभूतियां हैं। तो भगवान प्रश्न भी कर रहे हैं उद्धव को और उत्तर भी दे रहे हैं। जो रिद्धि सिद्धि की बात की, जो विघ्न डालने वाली है, तो भगवान प्रश्न करके उत्तर भी देते हैं कि विभूतियां है क्या, ये रिद्धि और सिद्धि क्या है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे मिट्टी एक तत्व, एक वस्तु है, और उससे बने हुए पदार्थ, घर भी मिट्टी से बनता है, ये शरीर भी मिट्टी से बन रहा है भी क्या? गड़ा है, मिट्टी से निकले हुए धातु, वो भी तो मिट्टी है। लोहा है, उसको मिट्टी में रखो, जा करके वो भी लोहा भी एक दिन मिट्टी हो जाए। तो मिट्टी के बने हुए अलग अलग स्वरूप, मिट्टी एक है, लेकिन मिट्टी सब में है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, वो सब के सब विभूतियां हैं, मिट्टी की विभूति है। सब मिट्टी में से बनने वाला है। जैसे जल है, पानी, पानी में से तरंग भी बनते हैं, बुदबुदे भी बनते हैं, भाप भी बनती है, वर्षा भी बनती है, बदल भी बनते हैं, लेकिन वो सब में जल का स्वरूप है। तो जल के सब के सब स्वरूप है, परिणाम। जैसे अग्नि, अग्नि वस्तु है, पांच तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वैसे अग्नि भी वस्तु है, परंतु उससे बने हुए पदार्थ, ये शरीर के अंदर जो उष्मा, उष्णता है, उष्मा, वो क्या है? अग्नि। सूर्य, स्वर्ण, सोना, वो इसमें अग्नि है। ऐसी विभूतियां, इसकी प्रतीति कैसे होगी? वस्तुतः परमार्थ क्या है उसको ढूंढना पड़ेगा, और उस परमार्थ का तात्पर्य तत्व वस्तु है भगवान। जगत में तत्व जो कुछ भी है तो एकमात्र भगवान है, और भगवान ही तत्व वस्तु है, वैभव सब उसी का ही है। जो व्यक्ति भगवान की विभूति को पहले पहचान ले कि भौतिकता है, और जो साधक है वो अपने मार्ग में आने वाली विभूतियां हैं वो भगवान की है, वो माया है, माया भी भगवान की है, लेकिन मुझे विभूतियां से कोई मतलब नहीं है। विभूतियों को खेलने वाली वो माया की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मायापति प्रभु की आवश्यकता है। तो सबसे पहले भगवान की वो विभूति भगवान नहीं है, इसको पहचान ले, और उसके बाद उससे भी आगे बढ़ने के लिए उसके व्यवहार से ऊपर हो जाए। हर एक कदम कदम पर भगवान के वैभव का दर्शन होना चाहिए। ये पृथ्वी में गंध है, जल में रस है, तेज में रूप है, वायु में स्पर्श है, और आकाश में शब्द है। तो मन में प्यार है, बुद्धि में विचार है, ये सब के सब, ये सब भगवान की विभूतियां हैं, और भगवान के इस विभूति चमत्कार के रूप में प्रकट करते हैं, आश्चर्य भी होता है। ये शरीर ही देखो, शरीर की जो रचना है, वो भगवान की विभूति तो है, और उसमें जो रचना है और जो तंत्र है वो भी एक आश्चर्यमय है। ये शरीर है, शरीर में इतनी क्रियाएं और ऐसी बस चीजें हैं, तो भगवान की विभूति, विभूतियों में हमको चमत्कार दिखाई देते हैं, चमत्कार का दर्शन होगा। और जो प्रकट होते हैं उसको देख करके जो साधक साधक लोग भगवान के रूप में एवं जादूगर के जैसी जादू की अनुभूति करते हैं और मुक्त हो जाते हैं कि क्या है। और जब अपने स्वरूप तक पहुंचता है तब उसको पता चलता है, अरे ये क्या है, ये तो सबसे बढ़िया सबसे ऊपर की कोई चीज है, कोई तत्व वस्तु है, सब भूल जाता है। भगवान के समीप पहुंच जाने के बाद भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, आत्मस्वरूप तक पहुंच गया, उसको बाद में पता चलता, अरे ये मैं क्या देखा। बस एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि वो प्राप्त होने के बाद सब कुछ फीका लग जाए, जैसे भगवान गीता में कई जगह पर कह रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको प्राप्त हो करने के कर लेने के बाद दूसरी कोई भी चीज की इच्छा होती नहीं है, न भोग की, न वैभव की, न शरीर की, बस मिल गया उसमें ही हम मिल गए, मिल गया प्रभु तो हम मिल गए प्रभु। यह सुंदरता, यह स्वाद, ये जो हमारे शरीर की सुकुमारता के जो कुछ ज्ञान है, बुद्धि है, हमारी सुरीली आवाज जो कुछ भी आती है, कहां से शरीर में जो कुछ सौष्ठव आ रहा है, शक्ति बल आ रहा है, उसकी क्रिया हो रही है, कहां से हो रही है, बस इसका चिंतन करो, ये कहां से आ रहा है। भगवान में आप स्वयं ही मग्न हो जाओगे, अपने आत्मा में हो जाओगे, स्रोत कहां से आ रहा है। इतनी जिज्ञासा हमारे में उठनी चाहिए, ये सब कैसे हो रहा है, आधार किसका है, ये शरीर को, ये जगत को, ये विश्व को आधार किसका है, सब जिज्ञासा के साथ पूछते पूछते उसका प्रश्न का उत्तर मिलता जाएगा। जैसे जैसे एक के बाद दूसरा प्रश्न भी खड़ा होगा, उसके उत्तर भी आपको मिल जाएगा, समस्या का समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा, और धीरे 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 आप वहां पहुंच जाएंगे गहराई में, अपने आत्मा तक, अपने स्वस्वरूप तक। बस यही है ऊर्जा का केंद्र, यही है शाश्वत और अमर, यही है अमृत हमारे स्वरूप का। वहां पर ओवेलीन हो गया, शांत हो, बस इतना ही आवश्यक है कि इस विभूतियों में अपना मन लग नहीं जाना चाहिए। हम ढूंढने निकले हैं क्या और मन से फंस गए हैं कहां। सबसे पहले जब भी हम निकले हैं जिज्ञासा को साथ में लेकर, जिसको प्राप्त करने के लिए, उसकी विभूतियों को कभी भी अपने मन से पकड़ो मत। देखते देखते दृष्टा बनते उससे निष्प्रूह रहते हुए आगे निकल जा, कभी भी अपने आप को मत फंसने दो। जिसकी विभूति है उसका अनुसंधान करना चाहिए। शरीर हमारी विभूति है तो शरीर का ध्यान नहीं, शरीर में रहने वाले जो हम है, भगवान का स्वरूप अंश है, उसमें अपना अनुसंधान करना चाहिए। यह अनेकता जो दिखाई देने वाली है, दिखाने वाला है, वो मन है। अलग अलग जो दिख रहा है वो मन के माध्यम से दिख रहा है। इसी से नाम रूप का अनुभव भी होगा मन के लिए। जब यह जीव अंतर्मुख होकर के भगवत परायण हो जाता है तब केवल भगवान ही रहते हैं, आत्मा ही बचता है, न कुछ कर्तव्य होता है और न कुछ शेष बच पाता है। अपने आप ही शांत हो गए अपने स्वरूप में। जब अपने स्वरूप में आप लीन हो गए तब वो अवस्था कैसी होगी, भगवान 14वें अध्याय में गीता जी के अंदर बता रहे हैं, गुणाति सबसे परे हो गया, कुछ भी बाकी नहीं। जैसे भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं कि गुणातीत किसको कहते हैं, कि सत्व गुण बढ़ते 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 सत्व जो सात्विकता है वो मुख्य बन जाती है और शरीर गौण हो जाता है, और सत्व की अभिवृद्धि होते ही शरीर अपने आप छूट जाता है, शरीर पूरा हो जाएगा वहां गिर जाएगा। तो ये गुणातीत अवस्था बताई है वहां पर हमारे, सब व्यवहार से ऊपर हो जाएगा अपना जीवन भी मन भी। तो भगवान ने उद्धव के प्रति विस्तार से वर्णाश्रम धर्म एवं उसके द्वारा आने वाली आराधना का वर्णन किया है। संक्षेप में कहा जाए कि धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि गुण दोष का वर्णन बहुत विस्तृत है, गुण और दोष आपके कभी भी पूरे नहीं होंगे, देखते चलो एक के बाद वो कभी भी खत्म नहीं होगा। गुण दोष तो आपकी नजर के समक्ष आपके जीवन में आते ही रहेंगे, देखते जाओ। गुण दोष की दृष्टि बनाकर राग द्वेष ही बढ़ता है, और गुण दोष को न देख करके राग द्वेष को निर्मूल करने के लिए अंतर्मुखता का ही एक गुण, बस जीवन में अंतर्मुखता ही एकमात्र लक्ष्य। जब तक मनुष्य गुण दोष देखते रहता है तब तक वो गुणातीत नहीं हो सकता, तब तक उसको शांति नहीं मिल पाती, तब तक वो अपने स्वस्वरूप तक नहीं पहुंच पाता। गुणातीत होने का एक ही मार्ग गुण दोष से पर हो जाए, गुण माने अच्छा है उससे भी निकल जाए, जो खराब है उससे भी बाहर निकल जाओ, आगे भी आगे ही बात। उत्तरावस्था जीवन की बस इसमें से यही प्राप्त कर लेना है, सार यही है पूरे जीवन के में से प्राप्त होने वाला मक्खन अमृत एक है, गुण दोष से परे हो जाओ, बस किसी का न गुण देखना न किसी का दोष देखना। जहां पर गुण अधिक देखने की हमारी वृत्ति बनेगी तो वहां पर राग हो जाएगा, और जहां दोष देखने की दृष्टि आ जाएगी वहां पर द्वेष आ जाएगा। मात्र राग करने योग्य है तो एकमात्र प्रभु अपने आत्मा का स्वरूप, और यदि द्वेष करने लायक है तो अपने में जो बचे हुए दोष हैं अपने शरीर के साथ, कि शरीर दोष भरा हुआ है, मृत्यु है, गंध दुर्गंध से भरा है, मलमूत्र से भरा है, शरीर ही एक जिसमें दोष देख लिया, और अपना स्वस्वरूप है उसके गुण देखा, बस गुणातीत अपने आप हो जाएंगे। उद्धव जी को भगवान यही बताते हैं, सार यही है पूरे कथा एकादश स्कंद का, सार भी यही है गुणातीत होना है। अभी ये तो एकादश स्कंद का एक व्यहंगावलोकन चल रहा है, अभी कथा का प्रवेश नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रभु ने एक वास्तविकता का दर्शन करा दिया, जब तक हम भौतिक भाव से भौतिक व्यवहार से उठ के ऊपर नहीं आएंगे तब तक न शांति है, न सुख है, न आत्मा है, न आत्मा का अमरत्व, और अमृत भी प्राप्त नहीं हो सकता। देखेंगे कल, हरि ओम।
दुख कैसा है?
जब तक भगवान है तब तक हमारे जीवन में अशांति नहीं, दुख भी नहीं है, लेकिन मन में जब तक वृत्तियां बदल के अंदर दूसरा आकर के बैठ जाता है तब हमारी विपत्ति, जीवन और शरीर की आपत्तियां आकर के खड़ी हो जाती है। बहते हुए जा रहे हैं और अपने आप को संभल नहीं पा रहे, मन के विचार मन के विचार और उसका प्रवाह व्यवहार का, व्यवहार का जो प्रवाह है वो हमें ही, हमारा ही प्रवाह होते हुए हमें अशांत कर रहा है। तो ऐसी दुख की अवस्था, उनको बाहर भेज दो यहां से, ए चले जाओ बाहर, चलो चलो निकल जाओ बाहर, बाहर निकल जाओ। अशांति अपने मन में पहले आती है सबसे, जो भी व्यवधान आता है उस समय वो अशांति पहले अपने मन में व्यवहार के द्वारा अंदर प्रवेश की, वही जब तक बना रहेगा। भगवान उद्धव जी से यही बात कह रहे हैं। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि विभूतियां सभी हमारी है, मिट्टी से बना हुआ हो चाहे स्वर्ण से बना हुआ हो, उस सब में विभूतियां तो वहां पर ही जाकर के प्रभु के की शक्ति है, प्रभु का ही वो सब कुछ खेल है। उस विभूतियां में न अटक करके प्रभु तक पहुंचना है। तो व्यवधान के रूप में आती हुई कोई भी अवस्था वहां पर व्यवधान तक रुके न रहे, उसके आगे बढ़ने के लिए उद्धव का जो प्रश्न है, उद्धव जी का उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अधिकार किसको प्राप्त होता है। जो अधिकार है अपने जीवन में, तो सबसे पहले बताया कि भगवान का ध्यान योग भजन सब कुछ होता रहेगा, उसके द्वारा प्रभु की विभूतियां का भी पता चल जाएगा और विभूतियों से धीरे धीरे अपने मन को हटाते हटाते हम अंतर्मुख बन के गुणातीत भी बन सकते हैं। गुणातीत का तात्पर्य है अपने जीवन की जो भौतिकता है और जो नाम रूपात्मक संबंध है उससे अलग हो जाना पड़ेगा। बस गुणातीत हो जाएंगे, व्यवहार से, मन से, विचार से, समाज के बीच में, अपने परिवार के बीच में बैठे हुए हैं फिर भी अपने अपनी वृत्तियां से अपने में बने रहे। हम स्वामी जी को देख रहे हैं, वृत्तियों से अपने मन को हटा लिया है और उसी व्यवहार में रहते हुए भी अपने आप को उसमें से निर्लेप जीवन अपना है। सब व्यवहार है, सबके बीच में बैठे हुए हम, फिर भी हमारा जो विनियोग है वो हमारे स्वस्वरूप में, हमारा जो लक्ष्य है उसमें जाकर के हम बैठ जाए। सब कुछ होते हुए भी अपना मन उसमें कभी भी नहीं लगा। सहजिकता से जो कुछ प्राप्त हुआ है उससे हमारा योगक्षेम, योगक्षेम के लिए कभी भी कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं। जैसा जिस समय जो मिल गया उससे हमारी आत्मसंतोष की तृप्ति, उसमें ही हमारा जीवन का व्यवहार आ गया। कभी भी किसी भी चीज की याचना करना ही नहीं, उस याचना में यहां तक कि मन में विचार भी नहीं करना। जब तक जब विचार जब जब विचार आएगा ना तब तक क्लेश, तब तक क्लेश होगा। विचार तो आया, इस चीज की आवश्यकता है मगर क्या करें, ये विवशता, ये पराधीनता, ये मन की दुखमय अवस्था हम ही बना लेते हैं, उसको हम ही उसका सर्जन कर रहे हैं और दुखी भी हम हो रहे हैं, अशांति का कारण भी हम और अशांत भी हम स्वयं मन के साथ। हमारा जो व्यवहार है और मन को जितनी स्वतंत्रता दी जाती है उतना ही हम दुखी होते रहते हैं। कभी भी मन को स्वतंत्रता मत दो, मन से पराधीन मत हो जाओ। मन रखो, मन कहीं नहीं जाने वाला है, शरीर में है, जीवन में है। जीवन का सबसे अधिक व्यवहार मन ही चलाता है। हाँ, स्थूल और भौतिक व्यवहार चलाने के लिए मन को सौंप दे, तू संभाल ले और हमें निवृत्त हो जाए। हम मन के द्वारा जो सांसारिक वो संबंध चलाता रहे, वो व्यवहार करता रहे, लेकिन अपनी वृत्ति से अंतर्मुख बन करके हमारे स्वरूप का अनुसंधान हम करने बैठ जाए, कभी क्लेश नहीं होगा, कभी नहीं। भागवत जी की कथा सुन रहे हैं आप, सुनते भी हैं आगे। राजा रघुगण की पालकी में जुड़े हुए भरत जी अपने स्वस्वरूप में कंधे पर पालकी का डंडा पड़ा हुआ है, चलते हैं, लेकिन अपनी मस्ती में चलते। शरीर का व्यवहार अलग है, वो मन कर रहा है और अपनी वृत्ति स्वस्वरूप में लीन है। राजा को पति कौन है, कैसा चल रहा है, उसको पालकी ढोने का भी नहीं आ रहा। तात्पर्य यही, व्यवहार में जीना भी है। आप परिवार छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हो, परिवार के बीच में बैठे रहो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने मन को ऐसे समझा लो, सुलझा लो, वो भौतिक व्यवहार का काम करता रहे और हमको हमारा काम करने, हम हमारे स्वरूप में बैठे रहे, जीवन जीने का स्वाद आएगा। आप परेशान नहीं हो सकते, आप कभी दुखी भी नहीं हो सकते, इतनी समझदारी अपने मन से प्राप्त कर। मन से क्या, हम हमारे स्वरूप से ही हम स्थिर हैं, प्राप्त हैं। इसलिए इस बात में कहने का तात्पर्य एक ही, कभी भी मन के गुलाम मत बनो, मन के अधीन मत हो जाओ कभी भी। मन हमारे अधीन हो रहा हो तो हो जाए, मगर हम मन के अधीन नहीं। और जब भी मन के अधीन हम होते हैं ना, उस समय हमारा पतन, पाप, दुख, अशांति। जब भी आप मन के अधीन हो जाओगे, उस समय आपको इतना परिणाम तो मिल ही जाएगा, किसी न किसी भाव के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी अशांति के रूप में, कभी व्यथा के रूप में, मगर आकर के खड़ा हो ही जाएगा। लो, ये परिणाम है। आप मन के साथ चल रहे हो, आप मन के अधीन हैं, तो लो इतना भी साथ में ले चलो, लेते जाओ, लेना ही पड़ेगा। आपने मन के द्वारा जिसमें अध्यास हुआ है, आसक्ति हुई है, उस चीज को तो आप पकड़ लेते हो, फिर इनामी योजना उसके साथ आ जाती है। इतना लिया है तो ये भी साथ में ले जाओ। तो हमारी ये अवस्था मनाधीनता समर्थ रामदास जी मन के अधीन न होने के लिए और मन को सुलझाने और समझाने के लिए इतनी बातें कही। ओ मनांचे श्लोक, मन के साथ नहीं हो रहा, मन हमारे साथ में चला आए, चल मैं तेरे को ले चलता हूं, लेकिन मन ऐसा सोचे कि तुम हमारे साथ आओ, ऐसा नहीं बन सकता। ये है महापुरुषों का कितना सुंदर उपदेश। यह भगवान भी उद्धव जी को यही कह रहे हैं कि मन के द्वारा भगवान की जो विभूतियां हैं और भगवान जिस विभूतियों के द्वारा पूरा संसार चला रहे हैं, पंच तत्व माया, वो भी तो भगवान की विभूति है। भगवान की विभूतियां जुटती है, बिखरती है, आती है, जाती है, उसका स्वरूप ही है, नाम रूपात्मक है। तो नाम रूपात्मकता उसकी, उसका स्वरूप और उसकी अवस्था भी वही है, सर्जन होना, नाश होना, नाश होता है, सर्जन होना। जन्म मरण का भय वहां तक होता है जब तक प्रकृति के साथ जुटे हुए, और प्रकृति का स्वीकार मन कर लेता है और मन का स्वीकार व्यवहार कर लेता है। बस यही हमारी जीवन की, जन्म जन्म की अवस्था बनी हुई है, उसमें लिपटे हुए हैं, और वही भाव और वही बात हमारे हरेक हरेक व्यवहार में बनता रहता है। जब जन्मों के संस्कार, जन्म जन्म के संस्कार पड़े हुए, इसलिए तो भटक रहे हैं, और भटकना भी सब कुछ हो रहा है, मन भटकाता है, हम नहीं भटकते हैं। मन इंद्रियों से, इंद्रियों को अपने साथ लेकर के भटकता है। मन के संकल्प विकल्प ही हमें दुखी करने वाले हैं। अब ये भौतिकता, भगवान के की जो विभूतियां में भौतिकता भरी पड़ी है, मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा भी है, और कई पदार्थ सुवर्ण है तो उसे भी कई पर कई आकार बनते हैं, परंतु उसमें सुवर्ण केंद्र में। बस भगवान उद्धव जी को गुणातीत अवस्था तक जाकर के वहां पर रुक जाना, यही हमारा स्वस्वरूप है। सब कुछ होते हुए भी उसमें न आसक्त होना, न अध्यास करना है, ठीक है, पड़ा हुआ, जिसकी आवश्यकता होगी उठा लेगा, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं नहीं पकड़ूंगा। अच्छे से अच्छी चीज पड़ी हुई हो तब भी समलोष्टास्म कांचन, परमहंस ठाकुर रामकृष्ण देव कभी भी अपने जीवन में गुणातीत होकर के ऐसी समदृष्टि की बनाई रखी थी, चाहे कैसी भी अच्छी कीमती चीज हो और इसके साथ वहां पर मिट्टी पड़ी हो, दोनों को एक करके ऐसे गंगा जी में फेंक दिया। यहां तक उनकी अवस्था थी। उनके आसन पर भी यदि कोई धातु की चीज रखी जाती तो भी उनको पता चल जाता इसमें कुछ है। नरेंद्र विवेकानंद ने इनकी इस अवस्था की परीक्षा की, सब सफाई हो गई, जा करके एक रुपया चांदी का एक रुपया रख दिया उनके आसन के नीचे। ठाकुर आए, वो जैसे पैर धरने के लिए उठाया और आसन को पैर छुआ, उसी समय जैसे करंट लगता है वैसे उन्होंने पीछे हटा लिया। पूछा उस सेवक को, भाई साफ सुथरी की है? कि हाँ साफ, पूरा अभी साफ करके आया हूं, तो नहीं कुछ है इसमें? आसन उठा, उठाया उसमें से निकला रुपया। परमहंस देव जी को पता चल गया, बैठे थे वो उसी आसन पर बैठ गए। आया नरेंद्र विवेकानंद आए, कहते बस और कुछ आगे करना है? अब परमहंस जी पूछ रहे, तो गुणातीत अवस्था जो है, सब में से अपनी वृत्ति को उठा लो, मन के द्वारा जहां पर हम बंधे हुए हैं, जिस चीज में, जिस व्यवहार में, जिस व्यक्ति में, उसमें से अपने मन के, मन को वहां से हटाना या मन को रखो, लेकिन वृत्ति को उठा लो। मन भटकता रहेगा, उसके अधीन मत हो कभी। मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर, बिना चढ़ाई काम ठीक कैसे लगे गोती। वो भी जा करके भटक करके वापस आ जाएगा। जैसे मार्ग में चलते हैं बहुत कुछ देखते हुए चले जाते हैं, लेकिन उसमें हमारी दृष्टि भी नहीं रुक अटकती है, ना अपना मन रुकता है, ना अपनी गति, देखते हुए भी चले चलते रहते हैं। बस वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे जीवन के व्यवहार में भी ऐसे चलते हैं, देखते जाओ आँख से। लेकिन इसके साथ 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 हमारे स्वस्वरूप में लीन होकर के अपनी जो यात्रा है आत्मस्वरूप की, उसके तरफ निकल गए। जो हमारी वृत्ति जितनी हम स्थिर कर सकते हैं उतनी उतना हमको ही आनंद देगा, इतनी शांति मिलेगी। भगवान उद्धव को कह रहे हैं कि उद्धव, मन का भटकना ही हमारे लिए अशांति और दुख है, जितना भी हो सके उसको ध्यान से, भजन से, जप से, ज्ञान से, भक्ति से, प्रभु की कथा के श्रवण से उसको रोक लगा दो उसमें। जैसे जैसे वो साधन करता जाएगा वैसे वैसे उसमें धीरे धीरे सात्विकता आती जाएगी, उसकी उन्नति होगी, अपना पुराना स्वभाव वो भूल जाएगा, धीरे धीरे अपनी उस क्रिया में लग जाएगा जहां से जहां पर व्यवहार नहीं होगा, जहां पर अध्यास आसक्ति नहीं होगी, दुख और अशांति से वो दूर निकल जाएगा। और साधन भजन भी, ज्ञान इत्यादि भी जब जितना करते रहेंगे उतना ही हम धीरे 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 प्रभु भक्ति के साधन से भगवान के समीप पहुंच जाएंगे, और भगवान हमारे हमारे अंदर ही दर्शन होगा, तब जाकर के हमारे आत्मस्वरूप के अंदर पहुंच जाएंगे। अभ्यास करोगे तब सात्विकता बढ़ेगी, जैसे जैसे साधन करते रहोगे ऐसे आगे बढ़ते रहोगे, और आगे बढ़ते जाएंगे वैसे उसमें हमारे लिए बल मिलेगा, अधिक ज्ञान मिलेगा, और हम अधिक से अधिक संतोष प्राप्त करते हुए अंदर गहराई के अंदर चले और बढ़वा दिए तो अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है भजन में ध्यान में। तो क्या होगा, इससे शरीर का व्यवहार छूटा ध्यान भजन से, जैसे अंदर जाओगे ऐसे आगे बढ़ते मन मन से भी प्रवृत्ति और छूट जाएगी। तो वृत्ति जो मन के द्वारा बहिर्मुख होती थी वो अब अंतर्मुख होती चली, अब तो शरीर और मन को भी आनंद आ रहा है, चलो ध्यान में बैठ जाए, उठ जाओ जल्दी सवेरे में, नींद का त्याग करते और किसी के साथ न बोलना न देखना, जा करके उस ध्यान में बैठ जाते। एक दिन आधा घंटा बैठे फिर नहीं ये तो कम पड़ रहा है, एक घंटे दो घंटे उससे भी अधिक, क्यों कि उसमें से बड़ी शांति और सुख मिलता है। इसलिए वही हमारा अभ्यास भजन का, संकीर्तन का, ध्यान का, सत्संग का हमें गहराई में ले जाने के लिए अधिक से अधिक समय उसके पास जब भी प्राप्त होगा तब वो आगे बढ़ेगा। यहाँ तो आधा घंटे सुन रहे हुआ और कल से तीन तीन घंटा बैठ जाएंगे, क्यों श्रवण मात्र से हमको कुछ मिल रहा है, श्रवण से हमको शांति प्राप्त हो, प्रभु भजन में मन लग रहा है, मन भी अपनी वृत्ति से वहां पर स्थिर हो जा रहा है। नहीं तो तीन घंटे कौन बैठता है, और सब उसमें बैठते भी कौन है, जो प्रौढ़ है, जो अपनी जिंदगी के स्वाद सब ने भोग चुके हैं, और उस सब में असारता है, निसार है, ऐसा जब प्रतीत होता है तब जाकर के अपने आप को किसी सत्संग और कथा के बीच में दो घंटा तीन घंटा तक बैठा देता है। क्यों लोग कहते हैं महाराज कथा में तो बूढ़े बूढ़े आते हैं, सही बात है, जीवन की अनुभूति प्राप्त किए हुए ही आएंगे, जिसको पता ही नहीं है वो सत्संग में आकर के बैठेगा तब भी मन भटकता रहेगा। पहले उसको भटकने दो, भोगने दो, दुख और अशांति के स्वाद लेने दो, फिर बाद में वो स्वयं उब जाएगा, हट जाएगा कि चलो कहाँ सत्संग है, वहां पर जाकर के बैठे। बुढ़ापा में ही आकर के बैठते हैं वो कोई दुर्गुण नहीं है, सद्गुण है। क्यों? जीवन का भटकते भटकते देख लिया है उसका स्वाद, अब पता है कि परिणाम क्या आएगा। तो परिणाम आने से पहले जो कुछ हमने गलतियां कर दी है, जो कुछ भूल की है, उसको सुधार के हमारे जीवन को भी सुधार लें। और उस जीवन को सुधारने के लिए ही भगवान अपने श्री मुख से उद्धव जी को कहता कह रहे हैं कि बुढ़ापे में कैसे जीना है, अपने जो गुण रजोगुण सत्वगुण तमोगुण है वो सबसे परे होकर के तो बहुत बड़ी ऊंची बात है, लेकिन जब तक साधक अवस्था है वो साधक अपनी साधना करता है, भक्त भक्ति करता रहे, सेवक सेवा करता रहे, ध्यान करने वाला ध्यान करता रहे, बस उससे उस साधन के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते। वो हमारे आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा उपयोगी साधन है, उसी पर आरूढ़ होकर के चलो। कोई ज्ञान आरूढ़ है, कोई योग आरूढ़ है, कोई ध्यान आरूढ़ है, कोई भक्ति के ऊपर आरूढ़ होकर के चल रहा है और उसमें उसको आनंद आ रहा है, गति भी मिल रही है अपने जीवन की, अपने मन और विचारों की भी, वृत्ति को भी गति मिल रही है प्रभु के सन्मुख जाने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं वृत्ति जैसे मिलती जाएगी अच्छा है, उसके तरफ आगे बढ़े। उद्धव के प्रश्न पर उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं अपना अधिकार देखिए, पहले अपना अधिकार क्या है। बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया और जिज्ञासा भी बड़ी अच्छी लगाई भगवान ने। अपना अधिकार पहले देखिए, हम कितने अधिकारी हैं, किस साधन के हम अधिकारी हैं, और देखते हैं व्यवहार के अंदर भी जो जैसा जितना अधिकारी होगा उसको वैसा काम और नौकरी मिलेगी और ऐसा उसको तनख्वाह भी मिलेगा, जो जितना अधिकारी होगा उतना ही उसको मिलेगा। और एक सामान्य काम करने वाला एक कारीगर है, उसको जाकर के ऊपर बैठा देंगे संचालन करने वाले की जगह पर, प्रमुख पर, क्या होगा? तो सबसे पहले अधिकार देखा जाता है। भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं कि अधिकार क्या है, पहला अपना देखो। हो भी जाता है उसके उस साधन के अनुरूप हमारे पास निष्ठा और क्षमता नहीं है और उसको पकड़ के बैठ जाएंगे तो उसमें आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। या कथा या सत्संग सुन रहे हैं, आपको पंचीकरण और वेदांत की बात यहां पर रखेंगे तो ऊपर ऊपर से ही चली जाएगी, वो अंदर नहीं उतरेगी, वहां तो लक्षणाएं आएगी, भाग त्याग भी आएगा, उसमें इतना जल्दी आप उतर नहीं पाओगे। तो तात्पर्य कि उस तत्व का अभी हमारे पास अधिकार नहीं, उसके उसके लिए हम तैयार नहीं हुए, तो उसके लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। जीव ब्रह्म का जो एकत्व है उसको समझेंगे, लेकिन उस वेदांत की उस परिभाषा पर से नीचे उतरना, उस बात को यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि अधिकार सबसे पहले देखिए अपना क्या। विरक्तों के लिए ज्ञान योग है, सारा आसक्त है जो संसार में बैठे संसारी है, उन लोगों के लिए क्रिया योग है। जो त्यागी है, सन्यासी है, उसके लिए तो ज्ञान, ये शरीर में नहीं हूँ, ये सब क्षण मुंडूर है, नाम रूपात्मक है, उसका नाश होने वाला। ऐसा ज्ञान दृढ़ हो जाने पर अपने आप वृत्तियां छूट जाती है, आसक्ति निकल जाती है। ये तो विरक्त सन्यासियों का एक विषय मिल गया, लेकिन जो संसार में बैठे उनके लिए क्या है उनका? संसार आसक्त जो संसार में बैठे हुए हैं, उनका व्यवहार भी चल रहे हैं, तो उसको उनको दे दिया क्रिया योग, ये ले लो, कर्म करते रहो। गुरु कर्मे व तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्, पहले से जो करते आए वो करते रहो। लेकिन भगवान ने गीता के अंदर वहां पर बता दिया, करो मगर निष्काम अकिंचनता से करते रहो, करते जाओ, क्योंकि काम किए बिना बैठ नहीं रह नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए काम के लिए, तो कर उसमें उस कर्म के अंदर सेवा योग को रख दो, तुम्हें सेवा करो। ये परिवार मुझे भगवान ने दिया है, माता पिता पुत्र पत्नी जो कुछ है, पति पति है, सब भगवान का दिया हुआ परिवार, मैं सेवा कर रहा हूं, इसका नाम है क्रिया योग। कभी भी उसमें अपने आप को मत जुटाओ, मन वृत्तियां अपने स्वरूप में लगती रहे और मन व्यवहार के अंदर क्रिया योग करता है। देखो फिर वो जीवन जीने का आनंद आएगा, वहां न दुख होगा न अशांति होगी, कोई योद्धा नहीं आएगा जीवन आपको, उसी संसार का क्रियायोग शांत कर देगा, अंतर्मुख बनाएगा। लेकिन उस भाव से कर्म करो बाहर से, वृत्तियां में बैठ जाओ अंदर जाओ। तो ये भगवान ने अपने ही श्रीमुख से कहा कि जो संसारी है उनके लिए क्रिया योग है और जो सन्यासी है उनके लिए ज्ञान योग है। जिसके पास थोड़ा सा वैराग भी है और थोड़ा सा राग भी है तो वो लोग, उन लोगों के लिए भक्ति योग दिया, भक्ति कर्म भी करते रहो और जब भी अवकाश मिल जाए, समय बचा हुआ है, उससे भक्ति कर, तो उससे भगवान का भजन भी हो जाए और उसके साथ साथ अपने संसारिक जो घर का कार्य है वो भी हो जाएगा। क्रिया योग और ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों के लिए बता दिया कितना जरूरी। वैराग्य होने तक अपना जो भक्ति भाव है, अपना जो भजन है, उसमें श्रद्धा होने तक कर्मयोग का अधिकार आपके आपके पास रहता है, कर्मयोग का अधिकार आपके पास रहता है जब तक उसमें श्रद्धा रहती है। लेकिन श्रद्धा पूरी हो गई महाराज, अब तो अच्छी बात, श्रद्धा जैसे पूरी हो जाती है वैसे वो आगे बढ़ता है, विचार विभाग भी किया जाता है। क्रिया योग में उसके भेद पड़ते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, ये जरूरी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी भेद दृष्टि हमारे में आई जाएगी। तो जो विभाजन है किया जाता है वो अपने अपने अधिकार के अनुसार, उसमें साधन गुण होता है और अधिकार के विपरीत उसमें दोष आ जाता है, दोष दिखाई देता है। बहुत सुंदर यहां पर बात उठाई बताई, अधिकार के अनुरूप जब गुण दिखता है या उसमें कोई क्षति दिखती है तब राग और द्वेष आता है, वो गुणातीत नहीं हो सकता है राग द्वेष जब तक रहेगा। अपने स्वस्वरूप तक पहुंचने के लिए वही राग द्वेष, वो द्वंद्व